और उनका अनुसरण कर रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं उत्तमा भक्ति ग्रहण करने के लिए, चेष्टा कर रहे हैं, अभी मध्यम अधिकार में भी पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सब विचार दिए जा रहे हैं। लोग दूसरे सुन करके ये समझेंगे भी नहीं, व्यवहार में भी नहीं ला सकते। अभी उन लोगों के लिए यही है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस यही सब समझो। ये जगत हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जगत की सब चीजें मिल करके भी हमको हमारा कल्याण नहीं होगा, यही अभी समझेंगे। और वैष्णव लोग जैसा कह रहे हैं हम उसको अक्षरशः पालन करने की चेष्टा करें। गुरु जी ने कहा कुछ अंतर्भाव से एक, हम लोगों ने दूसरे रूप में समझ करके दूसरे रूप में लिया, इसलिए अभी साधन भजन हम लोग ठीक से करें तब इनको हम समझेंगे। उसी को कहते हैं ततस्थ या मने विचार यदि करी सब रस होते सिंगारे अधिक माधुरी। जिस समय में वो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, तटस्थ होकर के विचार करके कह रहे हैं प्रारंभ में, अब दशम स्कंद में पहुंचने पर उनकी तटस्थता हट गई। तटस्थ चेष्टा कर रहे थे किंतु तटस्थ नहीं रह सके, कंस को गाली दे दिया या और लीलाओं का सूर्य बढ़ दिया। इसलिए ये सब विचार साधन साधन करो, इसके बाद में हम लोग साधन करेंगे, साधन के द्वारा कुछ कुछ समझ में आएगा, केवल विचार ग्रहण करने से नहीं हो। साधन के साथ साथ में हरिनाम, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा और जो उपाय बतलाएगा उसके साथ साथ में करने से ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्न सेवा, इसको भी याद रखना चाहिए। दास सख्य बार्सल और मधुर रस उत्तरोत्तर कृष्ण सुखा स्वादनेर आधिक्य। कृष्ण दास से सख्य, सख्य से बात्सल्य बद और बात्सल्य से मधुर, इसका निर्जास स्वादन करके क्रमशः अधिक प्रीत होते हैं। उसमें कृष्ण आस्वादन अधिक है, जैसे कि भक्त स्वामी सिंधु के दक्षिण विभाग में स्थाई भाव प्रकरण में यह बतलाया गया, यथोत्तरम असौ स्वाद विशेषोल्लास मय्यपि रतिर वासने आसाद्य भासते क्वापि कस्यचित। रतिर वासनाया, वासना मैंने की, ये वासना ही एक अद्भुत चीज है। कर्म की वासना होगा संसार में आ जाए, कृष्ण सुख को देने की वासना हृदय में आई, सेवा की वासना बस ऊपर उठेंगे। और रति रतिर वासने आस्वाद्य, रति में जो वासना है कृष्ण को सुख देने की वासना कामना, यही कृष्ण को अधिक आस्वाद कराती है, इसी के ऊपर में सब कुछ निर्भर है। रति रहने पर भी वासना नहीं रहेगी तो काम नहीं है, कृष्ण को सुख देने की वासना शांत से अधिक, दास्य में दास से अधिक, वात्सल्य सख्य में उससे अधिक, वात्सल्य में उससे भी अधिक मधुर में है। स्वादी स्वादी भासते क्वापि कस्यचित, रति उत्तरोत्तर आस्वादन विशेष से उल्लासमयी प्रतीत होती है। गुड़ भी मीठा है, ये गन्ना भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, खांड भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, मिश्री भी मिठी है, शीतबोल भी मिठी है, मीठा है, किंतु सब मिठाई एक समान नहीं है। ठीक उसी तरह से सभी रस मीठे हैं, शांत रस भी मीठा ही है। सभी शांत को रस ग्रहण किया है तो उसमें रस कुछ निष्ठा है कृष्ण के प्रति, इस निष्ठा के वजह से ही उसको रस में ले लिया। किंतु मधुर में ये सबसे विशेष है, वो स्वादी वासना उसकी है ऐसी। शांत में यह वासना कृष्ण को प्रीति करने की, सुख देने की वासना संकुचित होती है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं है। दास्य में कुछ इससे अधिक है, सख में और भी अधिक है, इतने से उत्तरोत्तर वो बढ़ता जाता है। इसलिए वासना भेद से का अपि कस्यचित कस्यचित भक्तस्य स्वादी भासते, भक्तों को भी और भगवान को भी, दोनों को ये प्रकाशित होती है, रस प्रकाशित होता है। अते मधुर रस कही तारना स्वकिया पर किया भावे द्विविध संस्थान। यह मधुर रस भी दो प्रकार का, स्वकिया और परकिया। स्वकिया माने विवाह विधि से, वेद विहित विधियों के द्वारा, पाणी ग्रहण के द्वारा एक पति एक पत्नी को ग्रहण करता है और पत्नी भी एक पति को ग्रहण करती है और पातित धर्म वर्त धर्म को निभाती है दोनों, पति और स्त्री, तो ऐसी स्त्री को स्वकिया कहा जाता है। और परकिया विवाह बंधन विधि जो है वेद शास्त्र की, उन विधियों की परवाह किए बिना विवाह हो और न हो। परकिया भी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है कन्यका और परोढ़ा। कन्यका में विवाह नहीं हुआ और परोढ़ा माने विवाह हुआ है, तो वो दो हैं। तो विवाह हो अथवा न हो, विवाह विधियों की अंतर्गत नहीं, प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति वैसा भाव है, प्रेम की प्रधानता, प्रेम के ऊपर में, अनुराग के ऊपर में निर्भर होकर के कृष्ण से वो अनुराग के वश में मिलती हैं, इसको कहते हैं परकिया। परकिया भावे अति रसर उल्लास, स्वकिया में एक घंटी के अंदर में बन जाता है, सीमा में आदमी बन जाता है, दोनों पति और स्त्री दोनों उस घंटी से, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। किंतु परकिया के लिए मुक्त प्रग्रह, कोई बंधन नहीं। किंतु एक बंधन है, वो बंधन नहीं बल्कि स्वेच्छा से ही ऐसा होता है, कृष्ण से जो प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता, उस रूप में नहीं, कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्रियतम है। कृष्ण से भी करें दूसरों से भी करें ये लोक निंदनीय है और सब प्रकार से खराब, ऐसा नहीं, कृष्ण ही एकमात्र है। तो परकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार नाही अनत्रवास, ब्रज के अंतर्गत छोड़ करके और कहीं भी इसका निवास नहीं है। इसलिए हम लोग ब्रज में अभी आए, हम लोग भी करें ये नहीं, ये मतलब इसका नहीं है। ब्रज मैंने यहां कर रहे हैं गोलोक वृंदावन का ब्रज, उसके अतिरिक्त और कहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए पहले लिखा बैकुंठा दीते ये नहीं, एकमात्र ब्रज में है। ब्रज क्या चीज है, ब्रज कहाँ है, परब्रह्म के ऊपर भाग में, यहाँ पर कि परब्रह्म समाप्त होने को है, उसमें एक कृष्ण लोक है, इस कृष्ण लोक को पहले प्रारंभ में उसको नीचे वाले भाग को गोलोक कहते हैं। ये एक परीक्षा की भांति है। परीक्षा माने क्या? प्राचीर माने एक पहले किले होते थे, किला या नगर, उसके चारों तरफ में नहर जैसा बनाया जाता, पानी। जैसे दिल्ली में जाओ, आगरा में जाओ, किला के बाहर में भरतपुर में वैसा बनाया जाता जा, पानी में भरा रहता था जो कोई उसको पार करके नहीं जाए। इसलिए ये जो बाहर की प्राचीर समझो या नाला समझो, इसको कहते हैं गोलो। यहाँ पर ऐश्वर्य भाव है और स्वकीय भाव है। राधा जी रह सकती हैं, राधा जी गोपियां सभी हैं, किंतु सबका स्वकीय भाव। कैसे इसको समझने के लिए पीछे से देखो, भक्ति रसामी सिंधु इत्यादि। इसके बाद में ऊपर का थोड़ा सा भाग जो है वो हुआ द्वारका, और आगे चलो तो गोकुल, ब्रज इत्यादि उसका नाम है। वही उस ब्रज में गोलोकम जत्तु गोकुल वैभवम, गोलोक जो है वो गोकुल का या ब्रज का वैभव है। जैसे द्वारकाधीश मथुरेश ब्रजनंदन नंदनंदन के नंदनंदन जो हैं उनके वैभव हैं, वासुदेव जो हैं या नारायण ये वैभव हैं, किनके वैभव हैं। ऐसे ही इसको समझो, ब्रज का वैभव ये गोलोक है। गोलोक के अंतःपुर का नाम, गोलोक का हृदय जो है वो ब्रज है, इस रूप में समझो। शरीर तो एक ही, किंतु जैसे प्राण है उसका अंतर, उसको कहते हैं ब्रज। उस ब्रज के बिना यार अन्यत्र नहीं वास, अन्यत्र कहीं भी निवास नहीं। और इस ब्रजपुर में ब्रज बधु गणेर एई भाव निरुपति, ब्रज में जो बधुए हैं, उस ब्रज में जो बधुए हैं, वहां पर भी बधुए हैं, उनका यह भाव निरवधि माने निरंतर, माने सर्वकाल में, भूत भविष्य वर्तमान समस्त कालों में ये भाव रहता है। कहां ब्रज के लोगों, तो उसमें नहीं, यही तो कह रहे हैं, ये जो ब्रज का जो पारकीय भाव है, वहां के ब्रज के जो बधुए हैं इनमें निरवधि रहता है। तार मध्य राधार भावेर अवधि प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण, अतएव यही भाव अंगीकार करी, वो ब्रज बधुओं का भाव अंगीकार करके, कहाँ जो लोग ब्रज में है, भाव अंगीकार करी साधिलेन निज वंछा गौरांग श्रीहरि। गौरांग रूप में श्रीहरि कृष्ण ही, श्रीहरि माने क्या, कृष्ण, अपने भाव का साधन किया, साध ली। किंतु अंगीकार का, अंगीकार माने क्या, अंगीकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अंग इकार हुआ ना, अंग माने क्या, इसमें ग्रहण किया, राधा जी का भाव लिया, अपने अंग में उसको अंगी बना करके आए, अंगीकार किया और लेकर के अपने भावों का आस्वादन किया। यहां ऊपर से स्वीकार होता है किंतु शाब्दिक अर्थ ही। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं आरतीन रस अपेक्षा दास्य सख वासल, मधुर वृंदावन में शांत रस का प्रकाश वृंदावन में नहीं है। क्यों नहीं है? शांत रस आता है किंतु बदल जाता है वो, या तो दास्य या सख्य में, वो अपना स्वरूप ही नहीं रख पाता। शांत रस के जितने भी पात्र हैं वो अपना स्वरूप ही बदल जाते हैं। कभी शांत रस मधुर में आ जाता है, कभी शांत रस वात्सल्य में आ जाता है, कभी दास्य में आ जाता है, अपना रूप ही नहीं रख पाता। जैसे लताएं शांत हैं, किंतु बन जाती हैं क्या, मधुर में आ जाती हैं। गायें ये वात्सल्य जैसा ये शांत, किंतु बल कह जाता है एकदम वात्सल्य बन गया। ये बालू रेती जमुना का ये क्या चीज है, ये शांत किंतु क्या बन जाता है, मधुर रस का सहायक बन जाता है। जिस बालू के ऊपर में गोप गोप कृष्ण और सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, उसको उठा करके एक दूसरे के ऊपर में दे रही हैं, तो इसलिए कहां रहा शांत, इसलिए शांत नहीं रहा। घास क्या चीज है, शांत। मेघ, हिरण, इसको गोपियों ने कैसा वर्णन किया है, इस तरह से। इसलिए कहते हैं ये तीन रस में शांत को नहीं लिया, केवल दास्य सख वात्सल्य को लिया। ये जो तीन हैं इनके भी अपेक्षा भी श्रृंगार की माधुरी है, प्रेम उछलता नहीं है वहां। इस रस में प्रेम मधुर रस में सब समय उच्छ्वलित होता है। उच्छ्वलित किसको कहते हैं, घड़े में पानी है और लेकर तो छलक जाता है, तीनों में उतना नहीं होगा। मधुर रस में यह छलकता हुआ यह रस है, अधिक रहने के कारण इसको मधुर रस कहा जाता है। वह मधुर रस दो प्रकार का, स्वकीय और परकीय, हमने बतलाया। कृष्ण को विवाहित पति के रूप में ग्रहण कर मधुर रस उपस्थित होने पर उसको स्वकीय मधुर रस कहते हैं। जैसे द्वारका में महिषियां, सीता जी का क्या लिया जाएगा, मधुर रस है कि नहीं, स्वकीय मधुर रस, गड़बड़ी का कुछ है। मधुर रस एक साधारण रूप में कुछ कहा जा सकता है, किंतु नहीं कहा जाएगा। क्यों, द्वारका में मधुर रस, द्वारका में मधुर रस स्वकीय में बहुत सी नायिकाएं हैं। देखो एक बार उड़े ना जाए अब, तो सुनो इधर। द्वारका में बहुत सी नायिकाएं हैं और अयोध्या में कितनी नायिकाएं हैं, नायिका ही नहीं है वहां पर, वो क्या है, धुरंधर पतिव्रता है। पति छोड़ने पर भी उनको जो भी कष्ट देना चाहेंगे, कष्ट देने पर भी ये चू तक नहीं करेंगे, कुछ भी प्रतिवाद नाम की कोई चीज नहीं है। मान नहीं होगा, सीता जी को कभी मान हुआ, ऐसा तो वाल्मीकि रामायण में या किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। किंतु द्वारका में ऐसी कोई महर्षि नहीं है जिसको मान नहीं होता। वो गोपियां कह रही हैं, तू जा अपने प्रभु को कह, और वहां पर जा तू उससे मांगो, कुछ भी मांगेगा वो दे देंगे, क्योंकि आज एक और अनंत काल के लिए एक रूठेगी एक मानेगी, जो मानेगी उसके पास में जाना जिसको मना लिए, और जब रूठ गई उसके पास में मत जाना, तो दूसरे दिन और एक मान जाएगी फिर उसको देना, तीसरे दिन और एक रूठेगी, रोज रोज रूठेंगी और मनाने का काम चलता रहेगा। तुमको रोज उपहार कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और यहाँ पर तुम, हम लोग क्या दें, हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण ने हमको रास्ते में खड़ा कर दिया, इसलिए हम लोगों के पास में कोई, जाओ उन्हीं के पास में। इसलिए वहां पर सबको मान होगा, वहां पर मान नहीं होगा, जैसा भी सताना है वो सता ले। राधा जी कहती हैं, नागनी आपनी दुख सबे बांछी तारीसु, मोरे जुड़े दिले दुख तार हो महासुख, से दुख कहती तो हैं किंतु कहाँ तक पालन करती हैं ये विचार करो देखो। तो फिर उनका चंद्रावली इत्यादि के साथ में विवाद कैसे, मान क्यों हुआ उनको, क्यों मान हुआ? रासस्थली में सब गोपियों के साथ में उनको आनंद ही होना चाहिए, तब शांत रस हो जाता। इसलिए अयोध्या में ये सब चीजें नहीं है, एक हैं और उनको भी घर से निकाल देंगे, भले ही घर में उनका अर्चन पूजन कर रहे हैं किंतु निकाल देंगे। और यहाँ पर सबको मान होता है, सबका मान प्रसादन करते हैं, यहाँ पर मित्रों में भी मान हो सकता है, दास में भी हो जाएगा, किंतु वहां पर किसी में भी नहीं होगा, न लक्ष्मण जी को न भरत जी को, क्योंकि वहां पर सख्य ही नहीं है, बस दास से, शुद्ध दास से है। अब ब्रज में दास से भी शुद्ध नहीं है, यहाँ पर सख्य से मिश्रित है, शुद्ध दास से नहीं, इसलिए शुद्ध दास से नहीं, शुद्ध दास से तो बैकुंठ में और उधर में है, यहाँ पर कुछ मिश्रित भाव, सख्य का भाव, वात्सल्य का भाव लेकर के है, किसी किसी का मधुर का भी मिश्रण है, जैसे सुबल लवंग उज्ज्वल मधुमंगल, इनका कुछ मधुर का भी भाव है। कृष्ण को उपपति से समझकर और उनसे जो प्रेम करती हैं राग के अनुसार में मिलती हैं, इनको कहते हैं पारखीय मधुर रस। मधुर रस के जो विचार करने वाले हैं वो एक बात, एक वाक्य से इस सिद्धांत को ग्रहण किया है, पारकीय भाव में ही मधुर रस का और अधिक उल्लास है, और वह बिना ब्रज के कहीं अन्यत्र उसकी स्थिति नहीं, केवल ब्रज में है और कहीं भी नहीं है, द्वारका इत्यादि में भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कृष्ण नित्य गोलोक बिहारी हैं, गोलोक में रहते हैं, गोलोक और ब्रज में भेद नहीं समझते, गोलोक को ही ब्रज समझ लेते हैं, ब्रज को ही गोलोक समझते हैं, कोई भी उसमें वैशिष्ट नहीं स्वीकार करते। कुछ समय के लिए इस जगत में उदित होकर के अपनी उसी लीला को इस जगत में प्रकट करने पर वो क्या करते हैं, इस जगत में उदित होकर के इस जगत में ही पारकीय भाव से लीला करते हैं, और जब जाते हैं तो इस सबको भूल जाते हैं। आया समझ में कुछ? उस जगत में कुछ लोगों का विचार है परकीय भाव से लीला किया, उस जगत में नहीं है, वहां पर स्वकीय है। जी गोस्वामी ने ऐसा लिखा है, कहते हैं वो जी गोस्वामी ने ऐसा कहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही छोटी सी है, इसलिए जी गोस्वामी को नहीं समझ, परिच्छया इत्यादि नहीं समझते। परिच्छया क्या है, स्वेच्छया क्या है? किंतु गोस्वामी का यह विचार नहीं है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये पढ़ रहा हूं कमेंट, उनकी व्याख्या। गोस्वामियों के विचार से ब्रज विहार नित्य है, ब्रज का विहार भी नित्य है। नित्य चिन्मय धाम गोलोक के नितांत अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ब्रज है। गोलोक बाहरी और गोलोक के भीतर का अंतरंग प्रकोष्ठ, इसका नाम है ब्रज। जिस प्रकार से प्रपंच अवतार में कृष्ण लीला कर रहे हैं, नित्य धाम ब्रज में भी उसी प्रकार की लीला विद्यमान है। उसी को देख करके उन्होंने सोचा जगत के जीवों पर कल्याण करने के लिए, उसी को लेकर के, उन्हीं परिकरों को लेकर के और इस जगत में अवतीर्ण हुए और लोगों को दिया प्रेम। ब्रज में पारकीय रस की नित्य स्थिति है। कविराज गोस्वामी ने तृतीय परिच्छेद में इसके पहले में बतलाया है, अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरे रसे से ब्रजर सहित है कृष्णेर प्रकाश। इस द्वापर के, द्वापर में मैंने ये दिया अष्टाविंश 28वें चतुर्युग के द्वापर के शेष में ब्रजर सहित कृष्णेर, ब्रज के सहित आते हैं और यहाँ लिखती हैं कि बिना ब्रज बिना यार अन्यत्र नहीं बात। तो ब्रज को लेकर के आए तो पारकीय भाव नहीं आया, ब्रज में नित्य का, और कहते हैं निरवधि सब समय इसलिए है। इसलिए आधुनिक लोग जो टीका इत्यादि कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ रच रहे हैं बेका, उनको जो पढ़ेगा निश्चित रूप में उनके विचारों को लेकर के अभ्रष्ट होगा, इसलिए उन लोगों के ग्रंथों को नहीं देखो। ये सिद्ध महापुरुषों के विचार जो हैं उनको ग्रहण करो, भले ही ये विचार नहीं आए किंतु उनका विचार नहीं आए तो अभी हृदय कोरा रहेगा तो एक दिन इनका विचार ले लेंगे, और वो विचार को लिख लिया हृदय में तो फिर उसका जन्म जन्मांतर बिगड़ा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ब्रजर सहित इस शब्द से स्पष्ट समझा जाता है ब्रज नाम की एक चिन्मय धाम में अचिंत पीठ है, और उस पीठ में के सहित 84 पुरुष ब्रज की भूमि को और भावों को लेकर के जगत में पधारे हैं, इसलिए 84 पुरुष की भी परिक्रमा होती है। इसके साथ में प्रपंच में उदित हुए थे, गोलोक के अंतपुर में वह नित्य ब्रज गोलोकपुर के अंतर में जो प्रकोष्ठ है वहाँ जो ब्रज है वहीं पर ये पारकीय भाव है और कहीं नहीं है। इसलिए जब वो प्रकोष्ठ यहाँ पर उतरता है तो इस जगत में वहाँ पर भी वो चीज उतर गया है, वहाँ नहीं है यहाँ हो जाएगा ये असंभव। क्यों ना तथा है गोलोक अपेक्षा अनंत गुणे उत्कृष्ट अवस्था, गोलोक की अपेक्षा भी अनंत गुण उत्कृष्ट रस का वहां पर स्थिति है गोलोक में जो है। गोलोक में केवल स्वकीय ऐश्वर्य पर भाव और वहां पर कोटि गुणी से श्रेष्ठ। प्रकट ब्रजे अप्रकट ब्रजे विचित्रता जीवे चक्षे उपलब्धि छोड़ते छे। अतः ये जो प्रकट ब्रज है अभी जो कृष्ण की लीला हुई इसमें वो अप्रकट जगत की जो विचित्रता है वही परिलक्षित होती है इस थोड़े से समय के लिए, बस यही थोड़ा सा भेद है, वो वहां है ये यहां है, दोनों लीलाओं में एक ही बात है। बल्कि एक जगह कहीं लिखा गया है ना, गोलोक गोकुल में गोलोक को दर्शन करो और गोलोक में गोकुल का दर्शन, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं ना, ऐसा है। इसको समझने की चेष्टा करो ये सब चीजें। यही ब्रज बधु यही चीज। अभी भाव अवस्था तक में गोकुल में गोलोक और सिद्ध अवस्था में गोलोक में गोकुल का दर्शन। ब्रजबधुर भावेर अवधि अत्यंत सीमा किसमें है, श्रीमती राधिका जी में। परिपक्व विमल रूप भाव रूप राधार ब्रजगत प्रेमे ही सर्वोत्तम, राधा जी का जो भाव है उसमें सर्वोत्तम भाव है। कृष्ण का मधुर रस का जितना दूर तक आस्वादन संभव है वो राधा जी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए उस भाव को राधा जी के भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही अवतरित होकर के है। राग मार्ग का प्रचलन उसको प्राप्ति करने के लिए मार्ग का प्रचलन किया और साथ साथ में स्वयं रस का निर्यास किया। यदि वो नई लीला ऐसा करते और राग मार्ग का प्रचलन नहीं करते, किसके द्वारा कराया, अपने भक्तों के द्वारा, अपने स्वयं साधन किया, उनको क्या जरूरत है ये विधि विधानों को माने, किंतु मर्यादा का भी पालन किया उन्होंने, संन्यास की मर्यादा, जबकि संन्यास लिया तब गृहस्थ में रहे तो गृहस्थ धर्म का जो मर्यादा है उसको पालन किया, इस तरह से सब समय अपना मर्यादा का पालन किया। ये हम लोगों के लिए रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद और सब गोस्वामियों के द्वारा जगत में ये प्रकाश करें। हम लोग उनके पथ को अनुसरण करके इन चीज़ों के प्रति हम लोगों का भी लोभ हो इसके लिए हम लोग प्रयत्न करें। आज यहीं तक रहे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
Bye. प्रणमामि हरि प्रिय। हा देवी काकू भर गद गद याद वाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत वुड भटारती आस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निज गणे गणनं विधि अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दी वरम जड्डं जागुदरोचि संविदधतं पट्टं वरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायें दाम भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्द। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणान्तिके। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। लिखा गया है इसमें धर्म छाड़ी रागे दुह करे मिलन कभू मिले कभू न मिले दैवर घटन ये सब रस निज्यास करीब आस्वाद यही द्वारे करीब सब भक्तेर प्रसाद। इसके संबंध में श्री जगतगुरु नित्य लीला पुरुष शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने थोड़ा सा कुछ लिखा है, हम उसका पाठ कर रहे हैं। अनंत लीलामय भगवान की विविध प्रकाश मूर्ति नित्य विराजमान है। भगवान वैकुंठ में जो लीलाएं करते हैं वो अनेक उसके प्रकोष्ठ हैं। कृष्ण लीला के भी अनेक प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ माने क्या? एक एक लीला का भाव, जो जो लीलाएँ यहाँ पर अवतरित होती हैं सब वैकुंठ में हैं। जैसे मत्स्य कुर्म बराह निसिंह बामन परशुराम राम इत्यादि सब जो लीलाएँ हैं इस सब का भी वैकुंठ में एक एक प्रकोष्ठ है। तो श्री गोलोक वैकुंठ के का विकृत प्रतिफलन यह देवी धाम है। ये देवी जो धाम है उसी जगत का ये विकृत प्रतिफलन। विकृत प्रतिफलन माने क्या? बिगड़ा हुआ छाया है, उल्टा छाया में जैसे प्रतिबिंब में दाहिना भाग बायां, बायां भाग दाहिना ये दिखता है दर्पण में। अच्छी तरह से लख करेंगे ये आंख इधर, ये आंख इधर दिख पड़ेगी। ऐसे ही उस जगत की विकृत छाया प्रतिफलन ये जगत है। वहां पर शुद्ध प्रेम है और इस जगत में विकृत है, इसलिए इसको काम कहते हैं। वहाँ पर प्रेम है, प्रेम से सब व्यवहार चलते हैं। यहाँ पर मोह से सब व्यवहार चलता है, मोह आसक्ति इत्यादि। वहाँ पर प्रेम के विवर्त तरह तरह रूप में दिखे जाते हैं और यहाँ पर मोह का काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य लड़ाई झगड़ा मारपीट ये मोह के कारण होता है। जिसमें जितना अधिक मोह और आसक्ति होता है उतना ही अधिक लड़ाई झगड़ा क्रोध इत्यादि में वो लग जाता है। वो ठीक ही नहीं कर पाता कि ये ठीक नहीं है। वहाँ का प्रेम सर्वोत्तम, गोपियों का प्रेम, इस जगत में शांत जो योगी हैं उनका प्रेम उच्च कोटि का माना जाएगा। यहाँ पर मर्यादा अच्छी मानी जाएगी और गोलोक के ऊपर में वृंदावन में मर्यादा के विपरीत वो धर्म छाड़ी रागे दुहे करे मिला, ये बतला रहे। प्रपंच के अंतर्गत में जितनी भी प्रकार की विचित्रताएँ हैं, जितनी भी विचित्रताएँ, वो सब गोलोक वैकुंठ के अनुरूप होने पर भी इसमें परिच्छेद है। परिच्छेद माने व्यवधान, बाधा, अवर्था। इसमें अवर्था माने त्रुटियां, दोष और हेयता और अनुपादेयता। अनुपादेयता माने तरह तरह के इसमें विभिन्न त्रुटियां, दोष इत्यादि हैं। और वहां पर काल का कोई विक्रम नहीं, यहाँ पर काल का विक्रम है। उस प्रेम में काल बाधा नहीं देगा। और यहाँ पर अभी आज एक मित्र है, खूब स्नेह का पात्र है, और 2 मिनट में 10 मिनट में क्या हो जाएगा, महान घोर शत्रु हो जाएगा। औरंगजेब, साथ दारा, शिको और ये सब एक साथ में जन्मे भाइयों में बड़ा प्रेम था, और जब राज्य का मामला आया तो क्या हुआ, एक दूसरे को काट दिए। ये जगत ऐसा है। अभी कोई मालूम होता है आज बहुत प्रेमी है, और थोड़े दिनों में ही, थोड़े देर में क्या होगा, वो बदल करके ऐसा हो जाएगा, मां सिंह का रूप धारण करेगा, कंट्रोल नहीं कर सकेगा अपना मोह, ये क्रोध के रूप में आ जाएगा। इसलिए इस जगत में प्रेम में वहां तो शुद्ध है, और यहाँ इस जगत में वही प्रेम आसक्ति और मोह इत्यादि रूप में बदल करके कभी कभी भीषण रूप धारण कर लेती है। इसलिए इसमें काल क्षोभ्य है, काले मित्र, अकाले अपर। इसमें किसी का दोष नहीं, काल का दोष है, अपना भी कुछ दोष है, प्रभु का कोई दोष नहीं। वैकुंठ में विशुद्ध सत्व है, वहां पर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबका शरीर विशुद्ध सत्व से बना है। और इस जगत में एक तो मिश्र और दूसरा गुणमय सत्व। जैसे मिश्र सत्व मैंने हमारी आत्मा अनुरूप में शुद्ध है, किंतु मन, बुद्धि, अहंकार और ये सब मिलकर के एक खिचड़ी बन गई है, इसलिए इसको मिश्र सत्व कहते हैं। अभी हम लोगों का मिश्र सत्व है, शुद्ध सत्व नहीं है, आत्मा भी अभी शुद्ध नहीं। आत्मा शुद्ध होने पर भी ऐसे मालूम पड़ता है ये इसमें मिल करके मैं ये हूं, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि इस शरीर में। इसलिए यदि प्रभु की कृपा होगी, हरि कथा सुनेंगे, उसका अनुशीलन करेंगे, दीनता आएगी, तब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, तब विषय छोड़ करके हम कभी मन शुद्ध होगा, ऐसे नहीं होता। विषय ओ आश्रय नित्य अनुभूति में विविध लीला वैचित्र नित्य वर्तमान। जहाँ पर शुद्ध सत्व है या विशुद्ध सत्व है, वहाँ पर कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति नित्य सिद्ध शुद्ध है। और यहाँ पर अभी मिश्र सत्व में नहीं है और गुणमय सत्व क्या है? आत्मा का ज्ञान एकदम नहीं, ये शरीर का ही ज्ञान, ये सब गुणमय सत्व है। गुणमय सत्व में भक्ति का विचार उतना नहीं होता। जागतिक चीजें ही भक्ति में भी, यदि भक्ति भी करते हैं।